हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। कुछ देर बाद गीता उन दोनों को डिनर के लिए बुलाने आई, पर आधे खुले दरवाजे से उसने बेड पर आदित्य और सुनैना को साथ लेटे हुए देखा। मुस्कुराती हुई वो चुपचाप वहां से चली गई। गीता सीढ़ियाँ उतर रही थी मुस्कुराते हुए, तभी उसे सीढ़ियाँ चढ़ती हुई स्वीटी दिखाई दी। गीता ने स्वीटी को अपने साथ वापस नीचे आने के लिए कहा। क्या हुआ गीता दी, सब ठीक तो है ना? आपने मुझे ऊपर क्यों नहीं जाने दिया? मैं तो सुनैना भाभी से मिलने जा रही थी, गीता के साथ वापस नीचे आते हुए स्वीटी ने पूछा। भैया और भाभी दोनों सो रहे हैं, रहने दो, अभी तुम बाद में चली जाना भाभी से मिलने, गीता ने स्वीटी को समझाते हुए कहा। स्वीटी ने गीता की बात मान ली और वापस नीचे अपने कमरे में चली गई। स्वीटी अपने कमरे में पहुंची तो उसे वहां एक मेल जैकेट दिखाई दी। वो सोचने लगी कि ये किसकी है। उसने उसे बाहर ले आई और गीता से पूछा कि क्या ये आदित्य भैया की है, शायद उसके कमरे में उसने गलती से रख दी होगी। गीता ने बताया, इतना छोटा साइज ये तो आदित्य को 5 साल पहले भी फिट नहीं होती। अच्छा, तो फिर किसकी है और मेरे रूम में कैसे आई? मेरी तो है नहीं, स्वीटी ने अपने हाथ में पकड़ी जैकेट की तरफ देखते हुए सोचा। अरे हाँ, ये तो अरुण की होगी, स्वीटी की बात सुनकर गीता को याद आया। अब ये अरुण कौन है और जो भी है वो मेरे रूम में क्या कर रहा था? गीता की बात सुनकर स्वीटी ने आईब्रो उठाते हुए अरुण के बारे में पूछा। अरे वो सुनैना भाभी का छोटा भाई है, बहुत ही प्यारा बच्चा है। नैना भाभी के एक्सीडेंट के बारे में पता चलने के बाद वो 2 बार उनसे मिलने आ चुका है। आज दिन में सुनैना भाभी नीचे ही थी और उन्हें ऊपर चढ़ने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। वो तुम्हारे रूम में ही रेस्ट कर रही थी तो उनका भाई भी उनसे मिलने वहां पर ही चला गया था, शायद इसीलिए ये वहां पर भूल गया होगा, गीता ने स्वीटी को समझाते हुए पूरी बात बताई। ओके, भाभी का छोटा भाई, अंडरस्टूड नाउ, बट बहुत तेज भूख लगी है गीता दी, प्लीज आप जल्दी से डिनर लगा दो, गीता की बात सुनकर स्वीटी ने कहा। फिर अपना पेट पकड़कर भूखी होने का नाटक करते हुए बोली। गीता ने बताया कि डिनर तैयार है। वो डिनर के लिए ही आदित्य और सुनैना को बुलाने गई थी, पर उन दोनों को सोता देखकर उसने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा किया दी, वैसे मैं फ्रेशन अप होकर आती हूँ, आप तब तक मेरे लिए लगा दो डिनर, गीता से कहकर स्वीटी वापस अपने कमरे में चली गई। गीता ने स्वीटी के लिए डिनर लगा दिया। स्वीटी रात का खाना खाकर सोने के वक्त अपने कमरे में चली गई। अगला दिन सुबह के 4 बजे नैना और नकुल की फ्लाइट लैंड हुई और वे दोनों वापस अपने शहर आ गए। तानिया और डिज़ाइनर रितेश भी उनके साथ ही आ गए। सभी ने कॉल करके अपनी अपनी कार एयरपोर्ट पर मंगवा ली थी। सभी अपनी अपनी कार से अपने घर जाने लगे क्योंकि इन 2 दिनों में वे सभी काफ़ी थक गए थे और अब जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचकर आराम करना चाहते थे। नैना के पास तो अपनी कार नहीं थी, इसलिए वो एयरपोर्ट से बाहर टैक्सी स्टैंड की तरफ जाने लगी। तभी नकुल के कार का ड्राइवर कार लेकर वहां आ गया। नकुल ने नैना से कहा, तुम भी मेरे साथ ही चलो क्योंकि अभी इस वक्त मैं भी फ्लैट ही जा रहा हूँ। चूंकि नकुल और नैना दोनों को एक ही जगह जाना था, इसलिए नैना ने नकुल की बात नहीं मानी। नैना नकुल के साथ काफी कंफर्टेबल हो गई थी। नकुल अब उससे दोस्ताना बात करता था, फ्लर्ट नहीं करता था। अब दोनों साथ में काम भी करते थे, एक तरह का आधिकारिक रिश्ता भी था उनके बीच। नैना को कोई परेशानी नहीं थी नकुल के साथ जाने में। वो चुपचाप नकुल की कार में बैठ गई। कार में बैठने के बाद नकुल और नैना दोनों ने अपना मोबाइल फोन ऑन किया और फ्लाइट के दौरान आए सारे कॉल, मैसेजेस और नोटिफिकेशंस चेक करने लगे। नकुल सब चेक कर ही रहा था। सुबह के 5 बज चुके थे और वे दोनों नैना के फ्लैट पहुंचने ही वाले थे। तभी नकुल का मोबाइल फोन रिंग हुआ। उसे समझ नहीं आया कि इतनी सुबह कौन उसे कॉल कर रहा है, नंबर भी नया था। फिर भी उसने ये सोचकर कॉल रिसीव कर ली कि इतने सारे लोगों से वो इवेंट में मिला था तो हो सकता है उनमें से कोई हो, पर इतनी सुबह कॉल आना उसे हजम नहीं हो रहा था। आखिर इतनी सुबह कोई प्रोफेशनल कॉल नहीं करता, लेकिन फिर भी नकुल ने कॉल रिसीव कर ली। बात करते वक्त उसके चेहरे पर कुछ टेंशन नजर आने लगी। वो बस हाँ जी ओके करके ही बात कर रहा था। उसके साथ बैठी नैना ने ये चीज़ नोटिस कर ली, पर जब तक नकुल बात कर रहा था तब तक नैना ने उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। नैना ने कॉल डिस्कनेक्ट होने तक का इंतज़ार किया। नकुल ने जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट की वो तुरंत ही ड्राइवर से बोला, कार टर्न करो और चलो, मुझे कहीं और जाना है, अभी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या हुआ नकुल, इज एवरीथिंग ऑल राइट? किसका कॉल था और तुम ऐसे हड़बड़ाहट में कहाँ जा रहे हो एकदम से? नकुल ने कॉल डिस्कनेक्ट करते ही ड्राइवर को वापस कार मोड़ने को कहा तो नैना ने पूछा,
ओ नैना सॉरी, तुम भी तो मेरे साथ हो। ड्राइवर, पहले हम नैना को उसके फ्लैट ड्रॉप करते हैं, फिर उसके बाद जहाँ जाना है जाऊँगा मैं। नैना की आवाज़ सुनकर नकुल को इतना ध्यान आया कि नैना भी उसके साथ कार में है, नहीं तो वो कॉल पर बात करने के बाद इतना टेंशन में आ गया था कि जैसे उसे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर उसने नैना के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, शायद ध्यान से नैना की बात सुनी भी नहीं। इट्स ओके नकुल, कार यहीं रुकवा दो, मैं चली जाऊंगी। यहाँ से सामने ही तो है बिल्डिंग, तुम्हें जहाँ जाना है तुम चले जाओ, बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है। नैना ने काफी शक भरी निगाहों से नकुल की तरफ देखते हुए कहा, आर यू श्योर? इट्स टू अर्ली इन द मॉर्निंग और काफी सन्नाटा भी है रोड पर। नैना की बात सुनकर कार की विंडो से बाहर की तरफ झांक कर देखते हुए नकुल ने पूछा, नहीं इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी और सच में ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, तुम्हारा काम ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, नैना ने इतना कहा। उन दोनों के बीच की बात सुनकर ड्राइवर ने कार रोक दी। नैना अपना पर्स और सामान लेकर कार से उतर गई और नकुल को बाय बोलकर बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगी। नैना के कार से बाहर निकलते ही नकुल ने ड्राइवर से कार टर्न करने को कहा और फिर उस जगह का नाम लेते हुए उसे वहां चलने को बोला। ड्राइवर नकुल की बात सुनकर उस तरफ कार ड्राइव करने लगा। नकुल ने वहां रुककर नैना को बिल्डिंग की तरफ जाते हुए नहीं देखा क्योंकि उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आया था। सुनैना के एक्सीडेंट के बारे में पुलिस को पता चल गया था, इसलिए नकुल को वहां बुलाया गया था। नकुल ये सोचकर परेशान था कि अगर ये खबर मीडिया में आ गई तो इसका असर उसकी कंपनी पर भी पड़ सकता है, जो पहले ही काफी क्राइसिस से गुजर रही है। वो और कोई मेलोड्रामा नहीं चाहता था, इसलिए वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाने की सोचता है ताकि सुबह के इस वक्त वो किसी मीडिया या पेपराजी के कैमरे की नजरों में न आए। क्रमशः